ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अब करीब 3 दिन से इस ज्ञान सरोवर के कैंपस में ज्ञान की गहरी गहरी बातें, नई नई बातें सुन रहे हैं, जिसके अंदर अपना यथार्थ परिचय, सत्य स्वरूप की पहचान और उस परमपिता परमात्मा की पहचान जो इस सृष्टि का नियंता है, और उस परमात्मा से प्राप्ति, उसके साथ संबंध जोड़ने से जो हमें प्राप्त होती है, इन सभी बातों को आपने गहराई से समझा है। और एक गहरी बात, समय की पहचान, समय का महत्व, ये वर्ल्ड क्लॉक कैसे चलती है और कैसे मुझ आत्मा का इसके अंदर विशेष पार्ट है, और वो पार्ट परिवर्तनशील है, कैसे परिवर्तन होता है, उस बात को आज हम समय के चक्र के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे चक्र हैं, जैसे दिन और रात का चक्र ऑटोमेटिक चलता है, सवेरा होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, ढलती है, रात्रि होती है, और सवेरे सवेरे नया सवेरा होता है, और हर दिन वो चक्र ऐसे ही घूमता है। उसके पश्चात हमारा जीवन का भी एक चक्र है, बच्चा जन्म लेता है, बाल्यकाल, युवा काल, पौढ़ अवस्था, और उसके बाद वृद्ध अवस्था। तो ये भी जीवन का एक चक्र है। फिर सीजन्स का चक्र, गर्मी, सर्दी, बारिश और पतझड़, ये भी एक चक्र है। और एक बहुत बड़ा चक्र है जो समय का चक्र है, जिसको स्वस्तिका के रूप में दिखाया गया है, और उसको 4 युगों में हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है। आप सभी उन युगों को जानते हो, युगों के बारे में सुना हुआ है और वो है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। उसको स्वस्तिका के रूप में क्यों बताया है? क्योंकि स्वस्तिका का चिन्ह वो ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है, और जब हम उसको निकालते हैं तो राइट हैंड से शुरू करते हैं। स्वस्तिका, तो स्वस्तिका अर्थात स्व की स्थिति का दर्शन, अर्थात हम मनुष्य आत्माएं जो आपने पहले दिन ही अपने को रियलाइज किया कि मैं ये देह नहीं लेकिन मैं एक आत्मा हूं, अपने सत्य स्वरूप को जाना, मेरा सत्य स्वरूप ज्योति स्वरूप है, मेरा सत्य स्वरूप शांत स्वरूप है, मेरा सत्य स्वरूप पवित्र स्वरूप है। तो आत्मा के स्वरूप की स्थिति जो है, जो चारों युगों में दर्शाई गई है, हर युग में स्थिति के अंदर परिवर्तन आता है। सतयुग को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था। क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स, पैराडाइज था। मुस्लिम धर्म में कहते हैं अल्लाह का बगीचा, बहिस्त। सब धर्मों में उन दिनों को याद करते हैं। क्योंकि सतयुग अर्थात सत्यता का समय, आत्मा की वो पवित्र अवस्था, सतोप्रधान अवस्था, दूसरा सत्य का अर्थ होता है सार। तो उस समय हमारे जीवन का सार था सुख, संपूर्ण सुख, क्योंकि हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित थे, पवित्र स्वरूप में स्थित थे। तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारा व्यवहार सब उस स्वरूप के आधार से था, नेचुरल था कि हम सब आत्मा उस सत्य स्वरूप में है। और उस आत्मा का स्वभाव जो था शांति, प्रेम, पवित्रता, वो नेचुरल था, हर संकल्प में था, हर बोल में था, हर कर्म में था। इसीलिए मेरे जीवन के अंदर वो सुख था। और दूसरा सत्य का अर्थ होता है अविनाशी। तो आत्मा का जो अविनाशी स्वरूप है वो नेचुरल स्वभाव होने के कारण जीवन के अंदर जो मुझे सुख था वो भी अविनाशी था, संपूर्ण था, सदाकाल का था। देवताओं की महिमा में हम कहते हैं कि देवताएं कैसे थे, तो सर्वगुण संपन्न थे, सोलह कला संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो सर्वगुण संपन्न, तो हमारे जो कर्म थे वो कलाओं के रूप में थे, नेचुरल थे, गुणों से भरपूर थे। और सभी गुण होने के कारण वो हमारे व्यवहार में थे, हमारे बोल में थे, हमारे कर्म में थे वो गुण, हमारे संबंधों में थे वो गुण। तो हमारे संबंध भी उस वक्त कैसे थे? सुखदायी थे, क्योंकि आत्मिक स्वरूप से हम संबंध में आते थे, आत्मिक दृष्टि से हम संबंध में आते थे, नेचुरल स्वभाव के रीति से हम संबंध में आते थे। जो नेचुरल हमारा गुण था वो प्यार का गुण, वो संबंधों में दिखाई देता था, वो मधुरता का गुण संबंधों में दिखाई देता था। तो हमारे अंदर हमारी आत्मा की जो अवस्था थी वो संपूर्ण सतोप्रधान, संपूर्ण पवित्र, संबंधों में सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती थी। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर हम संपूर्ण सुखी थे। तो संपूर्ण सुखी क्या है? तो संपूर्ण सुखी वह है, संपूर्ण सुख के अंदर चार प्रकार के सुख आते हैं। एक तन का सुख, तो कहते हैं यह शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है और उस समय प्रकृति भी पांच तत्वों की है, तो वो पांच तत्व संपूर्ण सत्व प्रधान थे। तो कहते हैं प्रकृति प्रकृति को हील करती है, तो ऑटोमेटिक इस शरीर की उन पांचों ही तत्वों से हीलिंग हो जाती थी। अपने वेद शास्त्र के अनुसार प्रकृति प्रकृति को हील कर लेती थी, तो स्वस्थ तन था, कोई बीमार नहीं होता था, तन से हम तंदुरुस्त थे, तन का सुख था। और उस समय हमारे मन का भी सुख था, क्योंकि आज सबसे ज्यादा परेशान करता है तो ये मन है। आज छोटी छोटी बातों में तनाव है, अनिश्चिंतता है, तो उस वक्त हमारा मन, क्योंकि आत्मा अपने नेचुरल स्वरूप में थी तो ये मन भी शांत था, मन भी सुखदायी था, मन भी हमारा मित्र था। तो मन का सुख भी उस वक्त था, फिर कहते हैं तीसरा सुख होता है धन का सुख। तो वो दुनिया थी जहां धन का सुख सभी के पास था, सभी के पास था। इसलिए मानव कैसा था, देव तुल्य था। सारी पॉपुलेशन जो है देव समान थी। तो आज कितना भी अमीर व्यक्ति हो, वो कितने भी गहने पहन लेता हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में जब हम देवताओं को देखते हैं, लक्ष्मी नारायण को देख लो, राम सीता को देख लो, उनके तन के ऊपर कैसे गहने होते, हर प्रकार के गहने, जो भी संसार की मूल्यवान चीजें हैं, चाहे सोना, चाहे हीरे, चाहे माणिक, चाहे मोती, हर प्रकार से सुसज्जित थे। तो उस समय सारी पॉपुलेशन ही देवतुल्य थी, क्योंकि आत्मा की अवस्था सत्वप्रधान अवस्था थी। आत्मा सर्व गुणों से संपन्न थे, उनके अंदर इतनी दिव्यता थी, और दिव्यता ही हमें देवतुल्य बनाती है। तो उस वक्त धन का भी सुख था। कहते हैं उस वक्त जन का भी सुख था, क्योंकि हमारी दृष्टि कैसी थी, पवित्र दृष्टि थी, एक ही संबंध था, और उस संबंध के आधार से ही नेचुरल हम अपने स्वभाव के हिसाब से व्यवहार में आते थे। इसीलिए सारे संबंध जो है वो सुखदाई थे। तो वो सतयुग को हम आज भी याद करते हैं और कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था। अर्थात जहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सभी के जीवन में थी, आज किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ की कमी है। शायद भगवान ने दोनों चीजों से नवाजा है, हेल्थ भी दिया है, वेल्थ भी दिया है, लेकिन उसके पास मन की शांति नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। तो वो हमारे ऐसे संपूर्ण सुख के दिन थे, जो संपूर्ण हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमारे जीवन के अंदर थी। तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, क्योंकि गुण इतने थे कि विकारों का तो प्रश्न ही नहीं था, नाम ही नहीं था। तो हम संपूर्ण निर्विकारी थे, और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर भी नेचुरल था, लॉ एंड ऑर्डर की भी जरूरत नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर, अपने स्व के स्वभाव, जो सातों गुण आत्मा के आपने पहले दिन सुने, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति स्वरूप में था। इसीलिए संसार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी ऑटोमेटिक चलता था। तो ये दिन हमारे 1250 वर्ष चलते हैं। जब वो 1250 वर्ष पूरे होते हैं तो हम त्रेता युग में आते हैं। त्रेता युग अर्थात जहां त्रुटि आती है, आत्मा के अंदर थोड़ी सी बहुत नॉमिनल ऐसी त्रुटि आती है जो आत्मा सतो प्रधान थी वो आत्मा सतो सामान्य बनती है। जो कहते हैं कि सतयुग के अंदर आत्मा के अंदर जो गुण थे वो 16 कला संपन्न थे। 16 कलाएं तो थी लेकिन 16 कला उसको भी कहा जाता है कि जब हम कहते हैं संपूर्ण, क्योंकि कहते हैं एक रुपए में क्या होता है 16 आना होता है, तो जब 100% होता है तो कहते हैं 16 आना सच। तो द्वापर युग आता है, सॉरी त्रेता युग के अंदर थोड़ी सी त्रुटि अर्थात हमारी कलाएं 14 कला हो जाती। लेकिन यहां पर भी आत्मा अपने संपूर्ण स्वस्वरूप में स्थित रहती है, इसीलिए ये भी हमारे सुख के दिन थे। यहां पर भी हम संपूर्ण सुखी थे क्योंकि हमारा व्यवहार स्वस्वरूप के हिसाब से कि मैं एक आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके आधार से चलता था। इसीलिए कहते हैं त्रेता युग भी सतयुग का ही हिस्सा है। वहां पर भी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ सभी के पास रहता है। और ये युग भी 1250 वर्ष का ये युग है। इस युग के पश्चात कौन सा युग आता है? द्वापर युग। तो द्वापर युग अर्थात जहां द्वैत आता है, ड्यूअलिटी, जिसको आज की भाषा में कहते हैं अंदर कुछ बाहर कुछ, अर्थात कहने का भाव है अगर आध्यात्मिक रीति से हम देखते हैं तो त्रेता युग में थोड़ी सी त्रुटि आई लेकिन ना के बराबर थी। लेकिन जैसे ही हम द्वापर युग के अंदर आते हैं तो हमारा स्वस्वरूप जो है, जो हमारा आत्मिक स्वरूप है, जो सातों ही गुणों से संपन्न स्वरूप है, उसके अंदर थोड़ी कमी आती है। अर्थात यहां पर हम देह भान और देह अभिमान में आते हैं, देह भान और देह अभिमान। और कितना परसेंट होता है? तो कहते 51%। परंतु फिर भी अपने आप स्वस्वरूप को हम नहीं भूले, आत्मा के स्वरूप को नहीं भूले हैं, वो 49% है। परंतु ज्यादा जागृत कौन सा है? देह भान, देह अभिमान, जो प्रैक्टिकल जीवन में, रोजाना जीवन में वो यूज होने लगता है। हमारे संकल्प में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में वो देह अभिमान आता जाता है, उसका प्रयोग होता जाता है। तो कहते हैं जहां देह भान और देह अभिमान आता है तो वहां क्या होता है, क्या होता है, विकारों की प्रवेशता होती, रावण की प्रवेशता होती है, और उसमें भी मुख्य कौन से 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम लोग क्या कहते हैं, जीवन में रहते हैं हम, मनुष्य है तो गुस्सा तो आएगा ही ना, गुस्सा तो जरूरी है ना, जीवन में रहते हैं तो काम तो होगा ही ना, क्योंकि संसार को बढ़ाना तो है ना, संसार को चलाना तो है ना। तो इन विकारों की धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर, डेली यूज के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर वो चीजों का आगमन हो जाता है और हमारी बुद्धि अशुद्ध होती जाती है। कभी क्रोध के वश, कभी काम के वश, कभी लोभ के वश, और हम समझते हैं ये नेचुरल है। आज कोई कंपनी है, उसके अंदर मेरा 100% शेयर होल्डिंग है, तो किसकी चलेगी, किसके डिसीशंस चलेंगे, हमारे डिसीशंस चलेंगे। लेकिन उसी कंपनी के अंदर कोई दूसरी कंपनी 51% शेयर ले लेती है तो डिसीशन किसके चलेंगे, डिसीशंस किसके चलेंगे। तो ऐसे ही ये देह अभिमान, देह भान की शेयर होल्डिंग मेरे जीवन के अंदर 51% हो चुकी है, तो मेरे स्वभाव भी उस हिसाब से हो गया है, मेरे सोच भी ऐसी हो गई है, मेरे कर्म भी उसके ऊपर निर्भर है। आज कहते हैं आपको तो परिवार नहीं है, हमारे को तो परिवार है, उसका देखना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ता है, दुख भी तो आएगा। लेकिन परिवार क्यों बनाया, सुख के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते बच्चे, बच्चे तो आज कैसे हैं, बिच्छू टिंडन जैसे, सुखदाई नहीं है, बुढ़ापे की लाठी समझा था लेकिन कैसे निकले, तो वो भी सुख के लिए ही थे लेकिन उनका जीवन भी इसके आधार से ही है, बनाया हमने सुख के लिए लेकिन हर जगह देह अभिमान, देह भान ने ले ली, मेरा तेरा आ गया, स्वार्थ आ गया। तो वही संबंध जो बहुत करीब के हैं वो भी कैसे बन गए, दुखदाई बन गए। जब दुखदाई संबंध बन गए, जीवन के अंदर दुख आ गया, तो हमने क्या किया, हमें तो पता ही है कि सुख का दाता, शांति का दाता कौन है, परमात्मा है। तो कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जैसे ही दुख की शुरुआत होती है तो हम परमात्मा को याद करते हैं वो सुख के लिए, क्योंकि इतना समय जो सुख था वो किसने दिया? सुखदाता निराकार परमपिता परमात्मा ने। तो ये युग है जहां से भक्ति का आरंभ होता है। सबसे पहले हम जिनकी पूजा करते हैं वो निराकार शिव की करते हैं। तो हमारी भक्ति कैसी होती है? अव्यभिचारी भक्ति होती है, सत्य की भक्ति, एक की भक्ति। उसमें से हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन धीरे 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 हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती, हम परमात्मा को छोड़कर देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के बाद भी तृप्ति नहीं होती, शांति नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं? भक्तों की पूजा करते हैं। हनुमान, आज आप देखेंगे संसार के अंदर राम के भगत इतने नहीं होंगे जितने हनुमान के हैं। फिर उनके बाद हम प्रकृति की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। भक्ति भी अव्यभिचारी बनती जाती है। और यही समय है भक्ति का भी विस्तार होता है, और धीरे धीरे परमात्मा इस सृष्टि के ऊपर धर्म पिताओं को भेजता है। तो अलग अलग धर्म पिता, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, अपने अपने समय पर आते हैं और वो सुख के जीवन के लिए इशारा करते हैं परमात्मा की ओर, संदेश देते हैं और हमारे बुद्धि को परमात्मा की ओर संकेत देते हैं। परमात्मा को याद करने से फिर से जीवन के अंदर सुख शांति आनंद आएंगे। तो धर्म पिताएं संदेश लेकर के आते हैं। तो ये हमारा द्वापर युग जो है भक्ति का युग है। धर्म पिताएं आकर धर्म स्थापन करते हैं, हम मंदिर बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले मंदिर नहीं था। सबसे पुराने थे पुराना मंदिर सोमनाथ का मंदिर, जो परमात्मा शिव की याद में विक्रमादित्य ने 2500 वर्ष पहले बनाया था। उसके बाद हम लोग कलयुग के अंदर प्रवेश करते हैं। कलयुग अर्थात जहां कलह कलेश है, दुख अशांति है, पापाचार भ्रष्टाचार है, क्योंकि हमारी आत्मा है उसकी अवस्था जो है वो तमोप्रधान अवस्था है। 100% हम देह भान और देह अभिमान में रहते, अपना जो सत्य स्वरूप था आत्मा का, आत्मा के जो गुण थे सातों ही गुणों को हम भुला देते हैं, अपने सत्य स्वरूप को भी भूल जाते हैं। आज किसी को भी कहो मैं आत्मा हूं, याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि इस देह को ही हम सब कुछ समझते हैं और इस देह के सुखों के पीछे हैं। आत्मा के सुखों को भूल गए, लेकिन देह के जो सुख है उसके पीछे 24 घंटा हम बिताते हैं। क्योंकि यहां आत्मा के अंदर कोई कला नहीं रही। सत्ययुग में 16 कला थी, त्रेता में 14 कला हुई, द्वापर में 8 कला हुई और कलयुग में कहते हैं 9 कला। कोई भी कला, कोई भी गुण इंसान के अंदर 100% नहीं है। कोई 20% है, कोई 30% है, हो सकता है कोई गुण 40% भी हो। है जरूर, क्योंकि आत्मा है तो वो गुण है जरूर, लेकिन उसके ऊपर हावी कौन है? उसके ऊपर हावी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसका प्रभाव ज्यादा है, देह का प्रभाव ज्यादा है, देह के अभिमान का प्रभाव ज्यादा है। इसीलिए हम आज दुखी हैं। रिश्तों में वो मधुरता नहीं है, मन को वो शांति नहीं है, तन को वो तंदुरुस्ती नहीं है जो सत्ययुग के अंदर थी। भले आज भक्ति का भी इतना विस्तार है, भले आज धर्मों का भी इतना विस्तार है, लेकिन धर्म में वो शक्ति नहीं, क्योंकि धर्म में वो सत्यता नहीं। आज साइंस का भी इतना विस्तार है, इतनी इन्वेंशंस हुई है, तो ऐसे देखा जाए तो मेरा जीवन का लिविंग स्टैंडर्ड तो ऊंचा बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंशंस हुई है, बहुत सारे सुख के साधन आज उपलब्ध है। लेकिन मेरे मन की दशा क्या है? मेरे मन को वो सुख नहीं है, मेरे मन को वो शांति नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है। आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। मोबाइल की इन्वेंशन 20-25 साल पहले हुई, उस समय अगर कोई कहता कि हम जेब में लेकर के मोबाइल घूमेंगे तो हम मानते थे। लेकिन आज वो टेक्नोलॉजी के कारण हर चीज की इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। मुझे लंदन का वेदर देखना है, मुझे वहां जाना है, तो क्या तैयारी करके मैं जाऊं? वेदर देखना है, गूगल में जाओ, तुरंत आपको पता चलेगा। तो आज कोई भी इंफॉर्मेशन अगर विश्व तक पहुंचानी है तो एक सेकंड की बात है, इतना सोशल मीडिया पावरफुल है। तो इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन इतना नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन होते हुए भी क्या इंसान समझदार बना है? समझदार बना है? क्या समझते हैं? अगर समझदार होता तो आज इस विश्व के अंदर जो वॉर्स चल रही है, देश देश के बीच, जो कम्युनिटी के बीच में झगड़े चल रहे हैं, आज टग ऑफ वॉर है जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक दूसरे की टांग खींच करके आज इंसान जी रहा है, क्या इंसान समझदार बना है? भले टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, इंफॉर्मेशन हर प्रकार की मेरे पास है, लेकिन मेरी समझदारी नहीं बढ़ी है, वो तो कम ही होती जा रही है। हेल्थ के फील्ड में भी इतनी इन्वेंशंस हो गई है, इतने अच्छे अच्छे ड्रग्स निकले हैं, इतनी सारी पथीज है, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, मैग्नेटिक थेरापी, क्या नहीं है आज। पहले कैंसर जैसे बीमारी को ऐसे मानते थे, आया मना हम गए, फिर जीना संभव नहीं है। लेकिन आज इतने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतने अच्छे अच्छे ड्रग्स है कि कैंसर होने के बाद भी हम उससे बाहर निकलते हैं। पहले टीबी का भी कोई सॉल्यूशन नहीं था, आज उसका भी सॉल्यूशन है। तो इतनी मेडिकल फील्ड में इन्वेंशन होते हुए भी क्या हम समझते हैं हमारा स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है, पहले से ठीक हुआ है। बहुत दूर नहीं जाओ दादा परदादा के पास, लेकिन अपने मम्मी पापा को भी देखो, माता पिता को भी देखो, उनका स्वास्थ्य कैसा था, वो इस उम्र में कितना काम कर सकते थे और हम आज इस उम्र में कितना काम करते हैं? क्या हम उनसे स्वस्थ है? एक कोविड ने बता दिया, भले कितनी भी इन्वेंशन हो लेकिन बीमारियां भी उतनी ही निकल रही, और सबसे अधिक बीमारी कहां से आती है? तो कहते साइकोसोमेटिक है, हमारा मन शांत नहीं है, हम लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, हमको संसार के अंदर भय है। आज नौकरी के लिए कोई सिटी के अंदर हम रहते हैं बॉम्बे जैसी, तो हमें अंदर टेंशन है कि मैं नौकरी पे पहुंचूंगा कि नहीं टाइम पर। भले इतनी फैसिलिटीज है लेकिन जूझना तो मुझे पड़ रहा है, ट्रैफिक से मुझे लड़ना पड़ रहा है। तो आज हरेक का मन जो है तनाव में है, आज छोटी सी बात के लिए भी तनाव है, आज एक बच्चे को भी अपने एग्जाम का तनाव है, हर व्यक्ति आज तनाव में जी रहा है। तो इतनी इन्वेंशंस होते हुए भी ना मेरे जीवन के अंदर सुख है, ना मेरे जीवन के अंदर शांति है। उसका कारण वही है कि हम देह भान में और देह अभिमान में 100% है। आज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने अपनी जगह बना ली है, हमारा व्यवहार भी उस आधार से है, हमारी बुद्धि भी कैसी है, क्रोध ग्रस्त है, काम ग्रस्त है, लोभ ग्रस्त है, बीमार है। इसीलिए हमारे डिसीशंस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मेरे जीवन के अंदर वो सुख शांति नहीं है। हर इंसान टेंशन में जी रहा है, हर जगह दुख दर्द, चिंता झगड़े सब कुछ मौजूद है, क्योंकि है ही कलह कलेश का युग। अगर इसको हम अपने दिन के हिसाब से देखेंगे तो हम उसको कैसे देख पाएंगे? तो दिन के अंदर सवेरा होता है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात होती है। तो इस चक्र के अंदर सतयुग जो है वो सवेरा है, त्रेता युग जो है वो दोपहर है, और द्वापर युग जो है वो शाम है, और कलयुग जो है रात है, और रात के बाद क्या आता है, रात के बाद क्या आता है, अमृत वेला आता है। एकदम से सवेरा नहीं होता है, अमृत वेला आता है। तो ये एक एक युग जो है 1250 वर्ष का है, परंतु कलयुग का थोड़ा हिस्सा सतयुग आने से पहले जो शास्त्रों में युग नहीं बताया है, वो परमात्मा ने आकर के इस युग को बताया है, उसको कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि ये समय कल्याण का समय है। ये युग कॉन्फ्लुएंशियल युग है, इसके अंदर सबका कल्याण होता है। क्योंकि कितनी भी गहरी रात हो, लेकिन उस रात के बाद सवेरा होने वाला है। चाहे उमावस की भी रात क्यों ना हो, लेकिन सवेरा तो होगा। तो ये समय परमात्मा ने बताया है, जो हमारे गीता में वर्णित है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, धर्म की वृद्धि होते हुए भी, विस्तार होते हुए भी, आज वो ताकत नहीं है, वो सुख नहीं है संसार के अंदर, वो शांति नहीं है। क्योंकि शांति देवा, सुख देवा, देवों का देव परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण समय, इस संसार में आने का समय, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने का समय, समय का परिवर्तन करने का समय, एकदम अति दुख से अति सुख में ले जाने का कार्य एक परम पिता परमात्मा का ही है। तो वो पिता परमात्मा इस युग में आते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन युग कहा जाता है। और वो परमात्मा आकर के हमें एक सिद्धांत सिखाते, वो सिद्धांत है जो थोड़े समय से आपके कानों में भी पड़ रहा है, वो है स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन उसका आधार है। पहले दिन आपको बताया गया कि आप एक आत्मा है, आपका असली स्वधर्म शांति है, प्रेम है, आनंद है, सुख है। तो परमात्मा आकर के स्व का ज्ञान देता है, स्वधर्म में टिकाते हैं, स्वधर्म में टिका करके हमारा बुद्धि का योग परमात्मा से अपने आप से जुड़ाते हैं, जिसको गीता में कहते हैं मन मना भव। तो जब हम मन मना भव होते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं स्व में परिवर्तन लाने की, जो धीरे धीरे हमारे अंदर देह भान और देह अभिमान आ गया है, उसको वापस स्व मान में, अपनी शान में, अपने असली स्वभाव में वापस लाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं राजयोग के माध्यम से, जो आप 3-4 दिन से कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, इस रात के बाद सवेरा होने वाला है, वो सत्युगी दुनिया आने वाली है, और वो सत्युगी दुनिया की स्थापना करने वाला स्वयं परमात्मा इस धरती पर आया है। और वो सहज राजयोग, क्योंकि अगर भगवान हमें कुछ सिखाएगा तो सहज विधि सिखाएगा, मंत्र पढ़ना, संस्कृत में बोलना जो हमें समझ में भी ना आए, श्लोकों के आधार से उसको समझ करके ग्रहण करना एक आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो परमात्मा आकर के सहज विधि हमें बताता है, पहले स्वस्वरूप बताता है कि बच्चे आप कौन हो, एक आत्मा हो, एक शुद्ध आत्मा हो, एक पवित्र आत्मा हो, एक सुखी आत्मा हो। क्योंकि कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान ने मनुष्य को अपने ही चित्र में अपने ही जैसा बनाया था। तो परमात्मा और कुछ नहीं कर रहे, एक स्मृति दिला रहे हैं। कहते हैं स्मृति जैसी होती है वैसी समृद्धि आती है। तो मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि हम कौन थे, कैसे थे। तो हम देवता तुल्य थे, परमात्मा जैसे थे, वही गुण हमारे थे और वही गुण मुझे धारण करने हैं। लेकिन केवल समझ नहीं देते, लेकिन मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने साथ संबंध जोड़ना सिखाते हैं, और उस संबंध के आधार से परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उस पिता परमात्मा की वो शक्तियां मेरे जीवन के अंदर आती है, और उस सत्य मार्ग पर, उस स्वधर्म पर फिर से चलने की ताकत मुझ आत्मा के अंदर आती है। तो कहते हैं पुरुषोत्तम, पुरुष माना आत्मा, और पुरुषोत्तम माना वो समय जो पुरुषों में उत्तम बन सकते हैं। तो परमात्मा आकर के हमको एक लक्ष्य देते हैं, कहते हैं नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी समान बने। तो वो लक्ष्य देते हैं, लक्ष्य देकर के हमें जीवन के अंदर लक्षण धारण करने हैं, वो गुणों को धारण करना है, और वो गुणों को धारण करने की विधि राजयोग है, मेडिटेशन है। उससे सहजता से वो गुण हमारे अंदर फिर से आ जाएंगे। तो परमात्मा का कार्य क्या है, परमात्मा का कार्य क्या है, विश्व को सुखमय संसार बनाना, विश्व को फिर से स्वर्ग बनाना। लेकिन हमारा मनुष्यों का काम क्या है, हम मनुष्यों का काम क्या है, केवल स्व परिवर्तन करना। दुनिया में सिखाया जाता था, अभी तक हम सोचते थे कि विश्व में परिवर्तन होगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर परिवर्तन आएगा। लेकिन परमात्मा नई विधि सिखाते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो समय की पहचान आज परमात्मा, जिसको जानी जानन हार कहते हैं, उस जानी जानन हार ने ये टाइम का जो चक्र है वो हम सबके आगे रखा, इसलिए ही रखा क्योंकि परमात्मा को विश्व परिवर्तन करना है। और हम समय को पहचान करके हम अपना परिवर्तन करेंगे। तो ये समय है और आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको यहां चांस मिला है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का तो आज जब से हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, भले 4 दिन से शुरू है, तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और आपने दूसरे दिन ही परमात्मा को भी जान लिया है, पहचान लिया है, कैसे उससे संबंध जोड़ते हैं वो भी आपको पता चल गया है। तो आप निंद्रा से जाग गए हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं और आज क्या करेंगे, इस चक्र को जान के मन के अंदर एक शुद्ध संकल्प करेंगे कि जो मेरे पिता परमात्मा है, जिसने मुझे क्रिएट करके संसार में भेजा था और कैसी अवस्था में भेजा था, क्या मेरे गुण थे, क्या मेरा स्वभाव था और कैसा मेरा व्यवहार था, तो उसका याद करते, उस व्यवहार में टिकने की, उस स्वस्वरूप में रहने की एक पुरुषार्थ, एक मेहनत शुरू करेंगे। तो कहते हैं हिम्मते बच्चे मद दे खुदा, मद दे बाप, तो वो हमारा बाप है, वो हमें जरूर से इस जीवन के अंदर ऐसी जीवन बनाने की मदद करेगा, ऐसी राह पर चलने की मदद करेगा और हम भगवान के साथी बन जाएंगे जो आया है विश्व परिवर्तन करने। तो हम स्वयं का परिवर्तन करके परमात्मा के इस विशाल कार्य के अंदर अपनी उंगली का सहयोग, कहते हैं उंगली के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठ गया, तो ये कलयुग रूपी पहाड़ भी बदलकर एक सत्युगी दुनिया की स्थापना परमात्मा जो कर रहा है, उसमें हम एक उंगली का सहयोग, स्व के परिवर्तन का सहयोग अवश्य देंगे। ओम शांति।